का जो टॉपिक है मुझे लगता है शायद सभी का फेवरेट होगा, मधुबन से प्यार। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पोयम मैं शेयर करना चाहती हूं जो ये स्कूल टाइम में लिखी थी। इतना मुझे पता है कि मैं आसमां को छू लूंगी। गा के सुनाते हैं। इतना मुझे पता है कि मैं आसमां को छू लूंगी, इतना मुझे पता है कि मैं आसमां को छू लूंगी। सारे जो मेरे सपने हैं, साथी जो मेरे अपने हैं, उनकी हर एक तमन्ना को मुझको गले लगाना है। अंबर के हर सितारे को आंचल में मैं छिपा लूंगी। इतना मुझे पता है कि मैं आसमां को छू लूंगी। खुशियों का हो भले मौसम, चाहे गमों के अंधेरे, दीपक वहीं जलाकर मैं रोशन उसे बना दूंगी।
इतना मुझे पता है कि मैं आसमां को छू लूंगी। इन जगमगाती रातों में, इन झिलमिलाती बातों में, कोई तो सिलसिला है इन ख्वाहिश भरी निगाहों में। बस एक ही कश्मकश है कि मैं कुछ तो कर दिखाऊंगी। इतना मुझे पता है कि मैं आसमां को छू लूंगी। इतना मुझे पता है कि मैं आसमां को छू लूंगी।
तो ये पोएम तो स्कूल टाइम में लिखी थी। उस समय कोई खास मकसद पता नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, लेकिन लाइफ का पर्पस तब समझ में आया जब मधुबन में पहली बार कदम रखा। तो एक्चुअली इस पोएम का मुझे रीजन समझ में आया कि आत्मा में कुछ एक बात थी कि कुछ तो करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? देयर इज सम स्पेशल पर्पस जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। तो जब मधुबन में पहला कदम रखा, जब पहली बार आए, तो वो एक यही कविता याद आई कि यस, दिस इज समथिंग आई नीड टू डू। तो जब ये टॉपिक मिला था, मधुबन से प्यार, उसके बाद ब्रदर ने बोला मधुबन से प्यार कैसे करें। और जब इस पे मैंने थोड़ा चिंतन किया, मुझे लगा टॉपिक तो होना चाहिए मधुबन से प्यार कैसे ना करें। इट्स नॉट अबाउट कैसे करें, ये तो एक ऐसी धरनी है। मधुबन तो नाम में ही मधु है, जिसका नाम लेते ही मुख मीठा हो जाए, है ना। तो इतना प्यार अपने आप से फ्लो करने लगता है। वो बोलते हैं ना कि लव इज इन द एयर, वो मधुबन के लिए ही बना है, है ना, क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशंस में ही वो प्यार है। ऐसा लगता है यहाँ कोई भी आएगा, कैसे भी स्वभाव का आएगा ना, तो उसके अंदर से भी प्यार ही निकलेगा। तो इट्स जस्ट एन ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ लव। वाइब्रेशंस में प्यार है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के रहने वालों से जो वाइब्रेशन बना, जो उनके वाइब्रेशन है, उससे मधुबन का वाइब्रेशन बना, तो मधुबन निवासियों से वाइब्रेशन बना। मुझे याद है जब हम पहली बार मधुबन आए थे, हमें कुछ खास आइडिया नहीं था कि हम यहाँ पे कोई आसपास शॉप है या नहीं है। तो कुछ बेसिक टॉयलेटरीज खरीदने थे, जैसे साबुन या सर्फ, ऐसा कुछ हम ढूंढ रहे थे कहाँ कोई शॉप होगी। मैं और मेरे युगल आए थे, तो एक सेवाधारी भाई मधुबन निवासी, उन्होंने हमें देखा कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं शायद। उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, हमने बताया कि हम दुकान ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमने बताया हमें टूथपेस्ट, साबुन और ये सब चाहिए। वो हमें लेकर के गए और अपने कमरे में से उनके पास पैक्ड जो भी सामान था वो सब लाके दे दिया। टूथपेस्ट दिया, सर्फ दिया, सोप दिया और भी दो चार चीजें थी सब। तो जब वो दिया और हमें क्योंकि हम तो पहली बार आए थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था, तो हमने उनसे पूछा कि हमें कितना पे करना है इसका। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो बाबा का है, आपको कुछ पे नहीं करना है इसका। और हमने बोला आपके तो पैसे लगे ही होंगे ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो बाबा से ही मिलता है, हम यहीं पर रहते हैं, तो शायद मंथली बेसिस पे उनको मिलता होगा कि इतना स्टॉक आपका है जो आपको यूज करना है। फिर उस समय थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तो हम मार्केट तो नहीं जा पाए। अगले दिन मार्केट गए और वही सेम सामान नया खरीद करके हम वापस पहुंच गए उनके पास कि भैया ये आपका सामान वापस। उन्होंने वो लिया नहीं और कहा कि आप बाबा के घर में आयो बिल्कुल निश्चिंत होकर के, जो आपको चाहिए यहाँ पे कोई कमी नहीं है, आपको ये सब देने की जरूरत नहीं। वो मधुबन का पहला अनुभव था। हम जिस देश से आए थे वहां पे परिवार में भी जब साथ में रहते हैं ना, तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है कि ये मेरा खर्चा है। और यहां आए तो ना कोई जान पहचान थी, ना हम उनको जानते थे, ना वो हमें जानते थे, और उन्होंने अपने हिस्से का निकाल के हमें दे दिया। तो ये भले इंसिडेंट बहुत छोटा सा है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे अनुभवों से हमारे मन में मधुबन के लिए, मधुबन निवासियों के लिए जो प्यार और सम्मान बढ़ जाता है, वो तो अमूल्य है, कोई कीमत नहीं है उसकी, है ना। तो इसलिए मन बार बार यही मन करता है कि हम यहां बार बार आए और यहीं रह जाएं। मधुबन आने से पहले एक ब्रदर थे जो ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए आए थे, सीनियर ब्रदर हैं काफी, अभी भी हैं यहाँ पर। मुझे उन्होंने क्या ज्ञान सुनाया वो याद नहीं है, लेकिन जब मैं उनके साथ थी तो मैंने क्या अनुभव किया वो आज भी याद है। अपने आप से जो इंटरनल कॉन्वर्सेशन चल रहा था ना, वो ये था कि जितनी सरलता इनके अंदर है, क्या मैं पूरी लाइफ में वो अचीव कर पाऊंगी, क्या मैं वो धारण कर पाऊंगी। तो ये बात मैंने जाके उनको भी बता दी। उन्होंने कहा कि बहन, अभी तो आप एक मुझसे मिले हो ना, मधुबन में तो खजाने हैं, वहां पे तो हर कोई ऐसा है, इतनी सरलता है, इतनी सादगी है, इतनी, जैसे कहते हैं ना कि कोई बनावटीपना है ही नहीं, है ना, सिर्फ देते जाना स्वरूप है ज्ञान के, तो अपने आप ही वो सरलता और सादगी झलकती है। उस समय मधुबन आने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी। खैर, हम सभी को पता ही है कि मधुबन तो बाप दादा की अवतरण भूमि है, तो उसकी तो देयर इज नो कंपैरिजन कि विश्व में, इस पृथ्वी पर, तीनों लोकों में कोई और ऐसी जगह होगी जहां पे भगवान के साथ हम इस तरह मिलन मना सकते हैं। तो ये तो इन इटसेल्फ इट्स अ यूनिक प्लेस जिसका रिप्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब हम यहाँ आए, मधुबन आने से पहले बहुत कुछ सुना पढ़ा था कि मधुबन ऐसा है और यहाँ के लोग ऐसे हैं, ब्रह्मा बाबा ऐसे ऐसे करते थे, यहाँ रहते थे, ये ब्रह्मा बाबा का कमरा था, ये उनका, ये हिस्ट्री हॉल था जहाँ पे बाप दादा अवतरित होते थे, बहुत कुछ सुना था और पढ़ा था। लेकिन और जब वो पढ़ते भी थे, उस समय भी हम उन यादों में खो जाते थे, ऐसा लगता था कि जैसे ये क्या खजाना मिल रहा है ना हमें ये पढ़ने के बाद भी। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, जब मधुबन को छूते हैं, तब एक्चुअली समझ में आता है कि वो क्या अनुभव था। जैसे कि बाबा के कमरे में जब जाते हैं, एक छोटा सा वहां बेड है, उसको देख के वो सारी यादें, ऐसा लगता है हम वहीं उसी समय में पहुंच गए कि बाबा यहीं बैठे हैं, मैं उनके सामने हूं, बाबा से दृष्टि ले रहा हूं। हिस्ट्री हॉल में जाते हैं तो वो सारी सीन ऐसा लगता है रीलिव हो रही है कि दो गद्दियां हैं जिनमें से एक गद्दी पे बाबा बैठे हैं, एक पे मम्मा बैठी है, शिव बाबा का अवतरण हो चुका है, वो जो सारी फोटोज वहां लगी हैं यज्ञ की हिस्ट्री की, ऐसा लगता है उस समय में हम पहुंच गए। एक बाबा की फोटो है जिसमें हिस्ट्री हॉल के बाहर जो दरवाजा है उस पे बाबा ऐसे वेव कर रहे हैं। जब भी मैं उस जगह से गुजरती हूँ, मुझे लगता है बाबा अभी भी यहीं खड़े होकर जैसे वेव कर रहे हैं, है ना। तो जब हम एक्चुअली फिजिकली इस जगह पर आते हैं तो हमें खास करके वो अनुभव और गहराई से अनुभव होने लग जाते हैं, हम उनको जीने लग जाते हैं, है ना। जब शांति स्तंभ की तरफ जाते हैं, तो फोटो में देखा था कि पहले वहां शांति स्तंभ नहीं था, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे वहां पे बैडमिंटन खेलते थे ब्रह्मा बाबा और बच्चे सब मिलके। तो जब वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वही जगह है जहां शायद मैंने भी खेला होगा बाबा के साथ, हो सकता है लास्ट बर्थ में, है ना। और फिर जब शांति स्तंभ को देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि बाबा, ब्रह्मा बाबा एंजल बनकर अभी भी ऊपर ही हैं और वहीं पर हैं और बोल रहे हैं कि बच्चे मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं, अभी भी हूं, पास हूं, साथ हूं। जब बाबा की कुटिया की तरफ जाते हैं तो फिर याद आता है कि मम्मा ने यहीं पे अंगूर की बेल लगाई होगी, है ना, कैसे मम्मा ने पालना की होगी हर एक पेड़ पौधों की, फूलों की। यहां बैठकर बाबा पत्र लिख रहे होंगे, शायद मेरे ही पत्र का जवाब दे रहे होंगे। वहां बैठ के ऐसा लगता है बाबा अभी मुंह ऊपर करो, मेरी तरफ देखो तो सही अभी, है ना। तो ये जब हम यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, उन मोमेंट्स के अंदर जब हम जीते हैं, तब हमें जो हमने पढ़ा था या सुना था उसको हम जीने लग जाते हैं, तब वो एक्चुअली समझ में आता है कि बाबा ने मुरलियों में क्या क्या कहा था। जैसे कि बाबा बात करते हैं दादियों के त्याग की, दादियों की स्थिति की। जब पहली बार हमने दादी गुलजार को देखा था यहाँ पे, जो मेरे लौकिक में जो फादर इन लॉ है वो इतना खास मानते नहीं थे पहले ब्रह्मा कुमारीज में ना, तो हम जब पहली बार उनके साथ में आए थे यहाँ पे, कोर्स वोर्स कर लिया था उन्होंने, सब कुछ कर लिया था और सारी मर्यादाएं भी सब वो करने लगे थे, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं था कि हाँ यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। काफी क्वेश्चन करते थे, बहुत ज्यादा सवाल उठाते थे। तो जब हम यहाँ मधुबन में आए, उन्होंने पहली बार दादी गुलजार को दूर से देखा था, बस दृष्टि भी नहीं ली थी, दूर से बस देखा था और ऐसे परिवर्तन हो गया। उसके बाद से वो लोगों को जवाब देते हैं, अभी सवाल नहीं उठाते। तो ऐसी स्थिति है, ऐसी वाइब्रेशन है उन दादियों की, उन आत्माओं की, कि कोई दूर से सिर्फ उनके संपर्क में भी आए ना तो उनमें कैसे परिवर्तन आ जाता है। वो हमने यहाँ आके देखा, वो हमने यहाँ आके अनुभव किया। जब दादी जानकी जी स्टेज पर आती हैं यहाँ पे, जब हम लोग ज्ञान सरोवर जाते हैं, तो पहले हॉल में कुछ क्लासेस चल रही होती है ना कुछ बातचीत हो रही होती है, बहुत पावरफुल क्लासेस होती हैं। लेकिन द मोमेंट दादी जानकी एंटर्स, आप सबने महसूस किया होगा कि हॉल के वाइब्रेशन कंप्लीटली बदल जाते हैं, है ना। ऐसा लगता है हर किसी का दिल नाचने लग गया, कि जैसे दादी ने जैसे ही एंटर किया, खुशी की ऐसी एक लहर आ जाती है कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। कितने लोगों को मैंने देखा आंखों में आंसू ही आ जाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। तो जब हम बाबा की मुरली में सुनते हैं ना कि तुम्हें शांति का कुंड बनना है, तुम शांति का कुंड बनकर के वाइब्रेशंस दो, सकाश दो, तो हम जब वहां बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में भी जब ऐसी स्थिति में बैठते हैं, मनसा सेवा भी करते हैं, तो बड़ी पावरफुल स्थिति महसूस होती है। लेकिन जब यहां आके दादियों की स्थिति को देखते हैं ना, तो समझ में आता है बाबा इस स्थिति की बात करते हैं, बाबा इन वाइब्रेशंस की बात करते हैं। हमारी भी स्थिति अच्छी महसूस होती है, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जो हम यहां आके महसूस करते हैं, कि कितना अभी तो आगे बढ़ना बाकी है, अभी तो कितना उड़ना बाकी है, है ना। तो गुड एक्सपीरियंस यस व्हेन वी आर इवन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, बट स्टिल जस्ट टू एक, जैसे बोलते हैं ना कि उसको एक नई उड़ान देना, एक नए लेवल पर लेके जाना अपने पुरुषार्थ को, अपनी स्थिति को, तो उसके लिए मधुबन आना तो मुझे लगता है मस्ट है। तो जैसे भाई ने बोला ना कि मधुबन से प्यार कैसे करें, तो मधुबन में आए और देख लें कि कैसे प्यार बढ़ जाएगा अपने आप ही, है ना। और यहाँ पे जब हम आके सभी का त्याग और तपस्या, उनकी स्थिति देखते हैं, खास करके अपने, जब हम लौकिक में घरों में भी रहते हैं तो दो लोग भी रह रहे होते हैं ना, तो उनमें कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। और यहाँ मधुबन में कितने सैकड़ों भाई बहनें साथ में रहते हैं अलग अलग कल्चर्स के, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल माहौल है, इतना यहाँ पर जो हर काम कितना स्मूदली हो रहा है। मधुबन की वाइब्रेशन में ऐसा है कि जैसे संकल्पों को सिद्धि प्राप्त है। हम सोचते नहीं है कि हमें ये चीज चाहिए, पर मन में कुछ बात आती है और वो संकल्प सिद्ध हो जाता है, और बाद में जब सिद्ध हो जाता है तब पता चलता है। मुझे लगता है यहाँ सभी का ऐसा अनुभव होगा, है ना, कि हम कुछ सोच रहे थे और वो हमारे सामने हो गया। तो ऐसा क्या है यहाँ पर, क्योंकि संकल्पों को भी लेकर के प्योरिटी, इतना इस पर ध्यान दिया जाता है। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ एक बार अकेले आई थी मधुबन में, तो एक ब्रदर ने मुझे एक गिफ्ट दिया मेलबर्न ले जाने के लिए, कि किसी को देने के लिए। और फिर जब मैं यहाँ रूम लेने के लिए आई, रिसेप्शन पे सारा सामान था, तो भाई बहनों ने मिलकर मेरी मदद की कि वो सामान रूम तक पहुँचा दें। तो वो जो गिफ्ट वाली बैग थी वो पहुँची नहीं रूम पे। मैं वापस रिसेप्शन पे गई और मैंने बोला कि एक बैग तो नहीं पहुंची है, गायब है। तो उन्होंने बोला कि आप रूम में जाके चेक करो फिर से, क्योंकि तीन चार लोग थे जो मदद कर रहे थे सामान उठाने में, काफी सारा सामान था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उठा लिया यहां से ना। उन्होंने बोला, बहन ऐसा संकल्प भी यहां नहीं करना। उस समय मुझे समझ में आया कि मैंने तो सिर्फ अभी एक बात ही बोली, है ना, लेकिन उन्होंने मुझे वहीं स्टॉप कर दिया कि बोलना तो दूर, ऐसा संकल्प भी यहां नहीं करना। कितनी पवित्रता है कि अगर किसी को देखा भी होगा ना,
कि किसी ने शायद उठाया होगा, लेकिन यहाँ पे जो भाई बहनों की स्थिति है वो इतनी महान, इतनी ऊंची स्थिति है कि संकल्प में भी इम्प्योर थॉट नहीं हो, इम्प्योरिटी ना हो जरा भी। इसीलिए तो संकल्पों को इतनी सिद्धि प्राप्त है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे, मुझे लगता है थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे, अनुभव होंगे सभी के जो हमें यहाँ सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे मधुबन में जहाँ खुद भगवान आते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनने की जर्नी तय की है, ऐसे मधुबन पे तो कैसे प्यार नहीं आएगा। जहाँ पे परिवार से इतना प्यार मिले, जहाँ पे अंदर आते ही ऐसे लगता है ये घर है। मैं लौकिक घर को वहाँ से होते हुए यहाँ पर जब आई थी पहले एक बार, मधुबन जब आई, उस समय महसूस हुआ कि अब मैं घर पहुँची हूँ। ऐसी फीलिंग आई कि दिस इज माय होम, है ना। तो इट्स जस्ट, यू नो, इट्स वेरी क्लोज टू ईच ऑफ अस, स्पेशली फॉर ब्राह्मण परिवार, कि हम सभी को वो प्यार महसूस होता है। ऐसे मधुबन पे तो तन मन धन जन सब समर्पित करने को दिल करता है। ऐसा लगता है बार बार वारी जाएं ऐसे मधुबन पे, है ना। जब यहां पे हम सभी का अनुभव देखते हैं, सभी का देखते हैं कि कैसे त्याग करते हैं ना सब लोग, उनके लाइफस्टाइल को देख के लगता है कि हम ऐसा क्या करें। जब बाहर रहते हैं कॉन्शियसनेस ऐसी होती है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कोई भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा क्या फायदा है इसमें। लेकिन जब मधुबन आते हैं, जब ज्ञान बाबा का समझते हैं, तो कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बदल कर वो धीरे धीरे डिवाइन कॉन्शियसनेस होती है ना। तो कॉन्शियसनेस बदल जाती है, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, है ना, इंस्टेड ऑफ व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो जब यहां आके उसका उदाहरण देखते हैं, ये बातें सुनने में लगती हैं कि हाँ बहुत अच्छी हैं हम करेंगे, लेकिन जब हम यहां आके देखते हैं कि भाई बहने कैसे कर रहे हैं, तो हिम्मत आ जाती है खुद भी करने की। जब हम लोग यहाँ पिछले साल 7-8 लोगों का ग्रुप आया था मेलबर्न से, हम सभी इकट्ठे आए थे, उनमें से 4 भाई बहने पहली बार मधुबन आए थे। हम पूरा साल इंतजार करते हैं कि कब वो मोमेंट आए और हम मधुबन पहुंचे। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल यहाँ पानी की बहुत कमी थी, है ना। बार बार हर रोज क्लास के बाद, मुरली के बाद अनाउंसमेंट होता था कि पानी को बहुत, यू नो, ध्यान से यूज करें, जितना मिनिमल यूज कर सके, हमारा काम चल सके हम उतना ही करें। और उस समय यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, रोड वर्क हो रहा था, तो पानी ऊपर लाने में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो हम सबने मिलकर सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे सभी को कितनी तकलीफ है, कहीं ना कहीं मतलब मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है ना, खाना भी बनना उसी में और सब कुछ। तो हम सबने डिसाइड किया कि हम थोड़ा जल्दी यहाँ से चले जाते हैं, एटलीस्ट कुछ तो हल्का होगा ना मधुबन के लिए। तो अभी एक हफ्ता, 5-6 दिन और थे हमारे यहाँ रुकने के, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। अंदर से दिल बड़ी बहुत मुश्किल से मनाया कि मधुबन एक साल के बाद आए और अभी जाना पड़ रहा है। पर साथ ही साथ वो बाबा जैसे बताते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा यज्ञ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या ऐसा करें यज्ञ के रिसोर्सेज को, यही तो मधुबन के लिए प्यार है ना। तो जब जिम्मेवारी, प्यार निभाने का समय आए तो हम सेल्फिश नहीं हो सकते। तो उस समय फिर हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा जल्दी यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो दीदियाँ थी उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, सब इजीली हो जाएगा। तो वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थी कि इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उनका दिल कितना बड़ा है, वो अभी भी हमें कहते हैं कि आप यहीं रुक जाओ, है ना। तो फिर हम वहां से जब जाने वाले थे तो मैं बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा से कहा कि बाबा जाने का समय तो नजदीक आ गया है। और मन तो मधुबन में ही है तो मैं कैसे जाऊं ऐसे। तो ऐसा लगा जैसे इंस्टेंटली रिप्लाई आया सामने से ना कि तुम अकेले जाओ ही नहीं, पहला तो बाबा को साथ लेके जाओ, दूसरा मधुबन को भी अपने साथ ले जाओ। तो मधुबन को साथ कैसे लेके जाएं बाबा, तो मैंने लिखना शुरू किया और 5-6 पेज भर डाले। और वो इतना सुंदर अनुभव था जैसे बाबा ने एक नया स्वमान दिया, मुझे नहीं पता आज तक वो मुरली में आया कि नहीं कभी, लेकिन एक नया स्वमान ही मिल गया, जैसे कि तुम मधुबन का स्वरूप बन के जाओ ना, है ना। जो मधुबन जहां पे रोम रोम में बाबा की यादें समाई है, हर कोने में, हर फूल पत्ती में, हर आत्मा में, तो वो रोम रोम तुम्हारे रोम रोम में हो जाए ना बाबा, है ना। तो ऐसा स्वरूप बन करके जाओ कि हर जगह मधुबन बन जाए, जहां हम जाएं हम मधुबन को साथ लेकर के जाएं, और जहां भी जाएं एक नया मधुबन बना दें। तो हम थोड़ा योग के साथ इसको अनुभव करते हैं कि क्या बाबा ने उस समय टचिंग दी, ताकि हम सब उसका अनुभव कर सकें कि मधुबन का स्वरूप माना क्या है ना।
ओके,
टॉपिक है ना मधुबन से प्यार। अनुभव तो बहुत है।
उसमें भी प्यार की अनुभूति कैसे की?
मधुबन में आके प्यार की अनुभूति कैसे की? हाँ जी, मधुबन में माया है, आती है, आती है। बिल्कुल सही,
वो हमारे लिए हो सकती है, वो आपके लिए हो सकती है।
हाँ जी,
तो उसमें आपने कैसे आपको मेंटेनेंस किया?
देखो, ये बहन ने बिल्कुल सही कहा कि मधुबन में माया तो आती है, लेकिन हमारी स्थिति पे अनुभव पे डिपेंड करता है कि वो हमने माया को कितना एंटर होने दिया, है ना। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा हुआ एक बार कि जब स्थिति थोड़ी सी डगमग हुई, लेकिन उस समय फिर मैंने क्या किया कि माना अभी इतनी भी स्थिति नहीं कि मधुबन में आने के बाद भी स्थिति ऐसे डगमग हो जाए, तो क्या कमाया मैंने। क्या सीखा मैंने, तो अपने आप से ये बात किया। और फिर जैसे बाबा बोलते ना कि अपने आप को सजा दो फिर, कि क्या करें हम, कैसे सुधार करें। तो पहले स्टार्टिंग में जब ये बात एक बार मुरली में आई थी ना कि बाबा कहते हैं अपने आप को सजा दो, तो मैंने क्या करना शुरू किया, इट्स वेरी फनी, कि मैंने एक टाइम का खाना कम कर दिया अपना, लेकिन उससे कोई खास बदलाव आया नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, जब यहां मधुबन में ऐसा हुआ ना, तो एक आइडिया आया बहुत अच्छा जिसने काम किया, कि जितना हम यूजुअली मैंने योग का प्लान किया था ना, उसको कम से कम 2 घंटा बढ़ा देना, कम से कम 2 घंटा, भले नींद छोड़नी पड़े, भले पूरी रात ना सोना पड़े। तो जब ऐसा हुआ, तो जब मैंने ऐसा किया, ये सोल्यूशन अप्लाई किया कि 2 घंटा बैठ करके उस स्थिति को ऊंचा उठाया कि दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुझे क्या करना है, तो अपने आप के लिए वो ही उन्नति का साधन बन जाता है। मैंने तो ये किया, ताकि 2-2 घंटे का योग और बढ़ता रहे। खैर, काफी सारे और भी होंगे मेथड्स, पर मैंने तो ये मेथड यूज किया एंड इट वर्क्ड फॉर मी। मधुबन का स्वरूप कैसे बने उसको अनुभव करते हैं। अरावली पर्वत का गायन है कि जहां आज भी देवी और देवताएं विचरण करते हैं, ये वही महानतम भूमि अरावली पर्वत श्रृंखला में मेरा मीठा मधुबन। जहां हम देव आत्माएं आज भी परमात्म याद में विचरण करते हैं, मधुबन का आंगन जहां विश्व के कोने कोने से आत्माएं आती हैं
बाप दादा बाहें फैलाकर सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। ये मधुबन घर सर्वात्माओं के लिए खुला है, तो आज बाबा मुझे मधुबन का स्वरूप बनाने आए हैं। ये विशाल बुद्धि, जहां विश्व की हर आत्मा एक पिता की संतान जैसे मधुबन में हर आत्मा को समाने की शक्ति है, इस विशाल बुद्धि में हर आत्मा को उनके संस्कारों सहित जो हैं जैसे हैं खुले दिल से समाने की शक्ति है। बाबा का कमरा मेरे मन मधुबन का वो कोना है जहां स्वयं परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर मुझे निराकारी निरहंकारी निर्विकारी भाव का वरदान देकर अपने जैसा बनाते हैं। मैं जब चाहूं मन मधुबन के इस कोने में अंतर्मुखी होकर स्वयं की कर्मातीत अवस्था को इस स्थिति को अनुभव कर सकता हूं। शांति स्तंभ जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचता है, देयर इज अ मैग्नेटिक पुल, एक चुंबक की तरह खींचता है अपनी ओर। मैं आत्मा परमात्म वरदान से चैतन्य शांति स्तंभ बनती जाती हूं। इन नजरों से शांति स्तंभ को देखते हुए असीम शांति मुझ में समा रही है। ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान का स्तंभ, शक्ति स्तंभ, शिव शक्ति बनकर संपूर्ण पवित्रता को धारण कर पवित्रता का स्तंभ बनकर मैं चलता फिरता चैतन्य शांति स्तंभ हूं। विश्व की आत्माएं जो शांति की खोज में भटकती हैं, वो मुझ आत्मा की ओर आकर्षित होकर इन्हीं नैनों से शांति और शांति धाम का अनुभव करती है। परमात्म साक्षात्कार करती है। बाबा की स्मृतियों से यज्ञ के इतिहास का हर एक पल हिस्ट्री हॉल जहां जाते ही हर याद ताजा हो जाती है। ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव साकार में बाबा टोली खिलाते, पालना देते, मुरली सुनाते, स्थापना के वो दिव्य दिन। वो हर याद अपने दिल में समाकर मैं बाबा की कुटिया की ओर बढ़ती हूं। जहां हर आत्मा अपने दिल का हाल बाबा को सुनाती है। अपनी उदासी को भुलाकर बाबा से रूह रूहान करती है। और बाबा हर बच्चे के मन का हाल सुनते, क्षमा करते, डायरेक्शन देते, उसी तरह मैं आत्मा ऐसी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूं कि हर आत्मा दिल खोल कर मुझे अपने मन की बात कह सके। आई गिव देम स्पेस एंड रिस्पेक्ट दैट दे कैन ओपन देयर हार्ट। एंड आई लिसन with an open mind, not being judgmental. हर आत्मा को मदद करना उन्हें स्नेह के झूले में झुलाना चैतन्य मधुबन बन चुकी हूं। मधुबन का स्वरूप जिसमें बाबा की याद और बाबा का प्यार रोम रोम में समाया है। ओम शांति।
तेरा दुलार नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है,
नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार।
मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है।